थी। तो उस महापुरुष की गाथा आपको सुनाने जा रही हूं, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापक हैं, पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्होंने आज से 70-71 वर्ष पूर्व 1936-37 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जिनका पूर्व नाम दादा लेखराज था, बहुत बड़े जौहरी थे, हीरे और जवाहरात का व्यापार करते थे। परिवार था उनका, 5 बच्चे थे, 3 बेटियां, 2 बेटे, बहुत सुखी परिवार था। हैदराबाद सिंध में रहते थे, उस समय तो सब एक ही अखंड भारत था। और उनकी एक बहुत बड़ी दुकान हीरे जवाहरातों की कलकत्ता में थी। कलकत्ता शहर 1936 में बहुत ही नामी ग्रामी शहर था और अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेज अक्सर करके कलकत्ता में ही आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं से शुरू हुई थी और अंग्रेज लोगों को कलकत्ता शहर बहुत पसंद था। तो बाबा के जो ग्राहक थे वो अंग्रेज भी बहुत थे और भारत में चारों ओर राजे रजवाड़े थे, छोटी छोटी रियासतें थी, नेपाल से भी अच्छा संबंध था। तो बाबा के ग्राहक ये राजे भी थे, नेपाल की का राणा फैमिली वो भी इनके ग्राहक थे। और अक्सर बाबा इन राजाओं के पास जाते थे, उनकी रानियां अपने गहने बनवाती थी। तो बाबा का बहुत नाम था हैदराबाद सिंध में। जितने ही वो बहुत बड़े व्यापारी थे, उतने ही बाबा बहुत बड़े दानी थे। धनी तो थे ही, लेकिन दानी भी थे। गरीब लड़कियों की शादी में अपना बहुत सहयोग देते थे, सवेरे से शाम तक दान भी करते रहते थे। उनके द्वार पर जो जाता था वो कभी खाली हाथ नहीं लौट कर आता था, इसलिए भी समाज में उनका बहुत बड़ा नाम था। लखीराज बाबू इस नाम से वे प्रख्यात थे समाज में। तो जितने ही धनी उतने ही उदार चित, इसलिए दानी थे और उतने ही बहुत बड़े भक्त थे। गीता का नित्य पाठ करते थे, बिना गीता का पाठ किए मुख भी जूठा नहीं करते थे। आप सोच सकते हैं कितनी उनकी अटूट भक्ति होगी। सवेरे रोज नहा धो के गीता का पाठ केवल खुद ही नहीं करते थे, लेकिन साथ साथ अपने परिवार वालों को भी बिठाकर गीता सुनाते थे। स्वयं बहुत शास्त्र पढ़े थे। अपने जीवन काल में उन्होंने 12 गुरु किए थे और गुरुओं से सदा एक जिज्ञासा उनकी बनी रही। उनसे प्रश्न करते थे कि इस दुनिया में इतना दुख क्यों है, आखिर भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, क्या इंसान सदा ही ऐसा दुखी रहेगा, ये विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब संसार में क्यों बढ़ते जा रहे हैं और ये मन एकाग्र कैसे हो। बहुत सारे प्रश्न स्वयं के प्रति, ईश्वर के प्रति, कर्म के प्रति, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये करते थे अपने गुरुओं से प्रश्न। अभी कौन सा समय चल रहा है, इसके बाद क्या होने वाला है, भविष्य कैसा होगा, लेकिन कभी भी उससे ऐसा संतोषजनक उत्तर किसी से भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अध्ययन तो उनका जारी था ही और भक्ति तो बहुत करते थे। कोई ऐसा मंदिर नहीं भारत में होगा जो न देखा हो, जहां दर्शन करने न गए हो। यहाँ तक कि अमरनाथ की यात्रा भी की, बाकी तो सब की, अमरनाथ की यात्रा कोई सब नहीं करते, पर वो भी उन्होंने की। परंतु उनका इष्ट विष्णु भगवान था, विष्णु को वो बहुत मानते थे। वैष्णव कुल के थे, कट्टर वल्लभाचारी थे, पक्के वैष्णव, शाकाहारी। विष्णु का चित्र सदा वो अपने पॉकेट में रखते थे। अपने घर में विष्णु की बहुत बड़ी पेंटिंग उन्होंने बनवाई थी। जहां भी खास विष्णु के मंदिर होते थे तो वहां हर साल भी जाते थे। जैसे श्रीनाथ में तो हर समय जाते ही रहते थे, क्योंकि वल्लभाचारी थे, पक्के श्रीनाथ के भक्त थे। तो श्री कृष्ण की पूजा, श्री नारायण की पूजा, विष्णु की पूजा, राम की भी पूजा करते थे, शिव की भी करते थे, लेकिन मुख्य रूप से विष्णु उनका इष्ट था। तो ये प्रश्न जो सदा उनके मन में उभरते थे और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता था, तो अवश्य उनके मन में कुछ न कुछ वैराग्य भी आता रहा। 1935 की उनकी एक डायरी प्राप्त हुई, जिस डायरी में वो अपने आप से बात कर रहे, अपने मन से बात कर रहे हैं कि हे मन, तुम क्यों नहीं शांत होते हो, क्यों इतने चंचल हो, आदि आदि, जैसे अपने मन से कोई बात कर रहा हो। तो इस प्रकार की उनकी धारणा तो बहुत ही ऊंची थी, पर वो समझते थे कि मैं इतना योग्य नहीं हूं। परिवार था तो परिवार वालों को कहते थे कि मैं कुछ समय एकांत वास करना चाहता हूँ, कुछ भगवान से प्रेरणाएं लेना चाहता हूँ। और लगभग 60 वर्ष की उस समय उनकी उम्र हो चली थी, 1936 की ये बात है। तो एक वैराग्य भी आ गया कि बच्चों को सब सौंप दे, अब मैं कुछ और धर्म की बातें सोचूं। बहुत कुछ व्यापार कर लिया, बहुत दुनिया देख ली, अब भगवान को हमें पाना है। इस अपेक्षा से वे सोचते थे कि कुछ ऐसा कार्य मैं करूं, क्या करूं वो भी उनको समझ में नहीं आता था। और एक वैराग्य सा जीवन में उत्पन्न होने लगा था। तो ये सब जैसे भगवान उनको तैयार कर रहे थे, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। तो अनायास एक दिन की बात है, बाबा अपने घर में बैठे थे। बंबई में भी उनकी बहुत बड़ी कोठी थी और अक्सर जब बॉम्बे जाते थे तो वहां तो बहुत गुरु लोग रहते थे, तो बाबा कोई न कोई गुरु को अपने घर में बुलाते थे। बड़ा घर था, जैसे कोठी जाता है, तो गुरु उनके घर में ही रहते थे और वो रोज सत्संग करते थे गीता पर। तो अचानक एक दिन गुरु का सत्संग चल रहा था, गीता का पाठ चल रहा था और सारा परिवार, सब मित्र संबंधी सब बैठे थे। गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी, जो गुरु कहे सत्वचन महाराज, इतनी उनकी अटूट श्रद्धा थी। तो अनायास गुरु का सत्संग चल रहा है और बाबा को एक ऐसी खींच हुई और उस खींच में जैसे बाबा उठे, उनको लगा कि कोई मुझे कोई शक्ति बुला रही है। तो बाबा उठ गए, सत्संग के बीच से उठ करके अपने कमरे में चले गए। उनकी पत्नी, बच्चे, इतना बड़ा परिवार, उनको हैरानगी हुई कि ऐसे बाबा सत्संग के बीच में तो कभी नहीं उठते हैं, ये तो जैसे गुरु का अपमान हो गया, गुरु बैठे हो और सत्संग से उठ के चला जाए। लेकिन क्या हुआ बाबा को, तो गए उनके पीछे पीछे और देखा कि बाबा कमरे में बैठे हैं और उनकी आंखें बंद है और बहुत आनंद मग्न स्थिति में वे बैठे हैं। अब उनको कैसे पूछे क्या अनुभव कर रहे हो, तो वो खड़े रहे, इंतजार करते रहे। गुरु को भी लगा कि ये क्या हो गया इनको, कभी तो ऐसे आज तक किया नहीं। तो जब वापस आंखें खोली तो बाबा से पूछा सबने कि बाबा आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया आपने, आप ऐसे सत्संग के बीच से अपने कमरे में चले गए और इतने शांत हो गए, क्या अनुभव किया। तो बाबा ने बड़ा सुंदर अनुभव बताया कि मुझे तो मेरे इष्ट के दर्शन हुए, यानी बाबा को श्री नारायण या विष्णु चतुर्भुज के दर्शन हुए, बिल्कुल साक्षात विष्णु चतुर्भुज उनके सामने आकर के खड़े हो गए और ऐसा वरदान दिया जो आज तक किसी को नहीं मिला होगा। और वो वरदान था अहम चतुर्भुज तत्त्वम, जैसे मैं विष्णु चतुर्भुज हूं तुम भी वैसे ही हो। बाबा तो देखकर हैरान हो गए, मेरे इष्ट के मुझे दर्शन हो गए और इतना सुंदर वरदान कि मैं भी विष्णु चतुर्भुज की तरह हूं, मैं कैसे हूं, मैं तो आपका दास हूं, आपका सेवक हूं। ये कहकर के जैसे बाबा चरणों में गिर गए, अंदर साक्षात्कार कर रहे हैं और इष्ट के दर्शन हो रहे हैं। बस फिर तो आंखें बंद ही थी और अंदर ही अंदर दर्शन में क्या देख रहे हैं, विष्णु के अलग अलग स्वरूप उनके सामने आ रहे हैं, श्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ आदि आदि, तिरुपति, बालाजी, ये सब विष्णु के ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। तो वो सारे रूप उनके सामने आते गए एक एक करके और हरेक ने उनको यही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। तो बाबा को लगा मैं कैसे ही हूं ये, लेकिन आश्चर्यचकित तो हुआ और आखिर आंखें खोली, चारों ओर देखा, सामने तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, परिवार खड़ा था, उनको क्या पता कि बाबा ने क्या अनुभव किया। लेकिन बाबा ने ये बात अपने गुरु को सुनाई तो गुरु को भी आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा दर्शन हुआ नहीं। वैसे कई भक्तों को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, भक्ति का फल उन्हें दर्शन या साक्षात्कार के रूप में होता है, अपने इष्ट उनके प्रसन्न होते हैं। लेकिन अक्सर करके जो वरदान प्राप्त होता है, हम फिल्मों में देखते हैं देवी का साक्षात्कार हुआ और देवी उनको कहती है तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तथास्तु का ही अक्सर वरदान मिलता है। लेकिन ये तथास्तु का वरदान नहीं था कि वैसा ही होगा, लेकिन ये वरदान था अहम चतुर्भुज तत्त्वम, यानी जैसे मैं हूं वैसे तुम भी हो। तो बाबा ने गुरु से प्रश्न किया कि ये कैसा वरदान मुझे मिला, मैं कैसे विष्णु हूं। तो गुरु को भी इतनी समझ माने उस समय नहीं आई कि इसका मतलब क्या होगा। तो गुरु ने इतना ही कहा कि हे लखीराज बाबू, भगवान को आपसे कुछ कराना होगा, ये ईश्वर की करामात है, आपको ऐसा दर्शन दिया, आपके अंदर वो विशेषताएं हैं, वो गुण हैं, तो भगवान को आपसे कुछ कराना है। बाबा के अंदर इतनी रॉयल्टी थी, जो जिन राजाओं महाराजाओं के पास जाते थे या वो उनके पास आते थे, उनके ग्राहक थे, वो भी बाबा को कहते थे कि बाबा आपके में इतनी रॉयल्टी है, ये भगवान ने शायद बड़ी भूल की है, राजा तो आपको बनाना चाहिए था क्योंकि आपके अंदर वो इतने रॉयल शिष्टाचार शालीनता वो सभ्यता वो संस्कार इतने ऊंचे हैं, लेकिन ये क्या भगवान ने भूल तो नहीं कि आपको राजा नहीं बनाया एक व्यापारी बनाया। तो बाबा कहते थे भगवान तो कभी भूल नहीं कर सकता, क्या पता क्या पार्ट है मेरा। वैराग्य भी उनको आता था लेकिन बिजनेस में भी होशियार तो थे। तो जब ये साक्षात्कार हुआ तो गुरु ने कहा कि भगवान को आपसे कुछ कराना है, वो आगे चल करके शायद राज भगवान खोलते जाएंगे, क्या खोलेंगे ये हमें भी नहीं मालूम। बस उसके बाद बाबा के जीवन में एक परिवर्तन आ गया। जो हीरे बाबा देखते थे, उनके पास कई नौकर थे जो हीरे तराशते थे, विदेशों से हीरे आते थे, भारत में भी बहुत हीरे मिलते थे, तो बाबा के अंदर में ऐसा वैराग्य आने लगा। हीरों का व्यापार तो करते थे लेकिन जब बाबा हीरों को देखते थे तो ऐसे लगता था ये हीरे नहीं है पत्थर है, उनको पत्थर दिखाई देने लगे, दृष्टि बदल गई। और ये पत्थरों का बैठ के मैं व्यापार कर रहा हूँ, और भगवान से बातें करते थे, हे भगवान, उनसे पूछते थे आपको मुझसे क्या कराना है, आपने मुझे तत्त्वम का वरदान दिया है तो मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, मैं तो इस संसार का एक प्राणी हूँ, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं, भक्ति ही करते थे और अपने आप को जैसे मैं नीच हूँ पापी हूँ दास हूँ कपटी हूँ गंदा हूँ बंदा हूँ मिट्टी हूँ चरणों की धूल हूँ, हाँ यही कहते रहते थे। अब इतना ऊंचा हमें बना दिया, ये किसका मतलब क्या है, भगवान क्या चाहते हो मुझसे, मैं तो इसके लायक भी नहीं हूँ। तो इस प्रकार की बातें वो भगवान से करता रहता था मन ही मन में, लेकिन वैराग्य भी साथ साथ आता गया। तो उसको लगा कि बस अब ये धंधा मुझसे होगा नहीं, जिम्मेदारी तो बहुत है और भगवान मुझे कोई नई जिम्मेदारी देना चाहते हैं। तो अपने परिवार वालों से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए बनारस चले गए। सोचा गंगा घाट पर जाकर बैठूंगा, एकांत वास करूंगा और भगवान की मुझे क्या प्रेरणाएं मिलती है मैं उसका अनुभव करना चाहूंगा। तो बनारस में उनके एक मित्र रहते थे, वो भी उसी प्रकार ही बहुत ही प्रख्यात थे, नामी ग्रामी बिजनेसमैन थे, हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे। तो सोचा कुछ दिन मैं वहीं रहूंगा उनके साथ। तो हैदराबाद से बाबा बनारस चले गए या मुंबई से गए, मतलब बनारस गए। तो बनारस में वो एकांत वास करने लगे, जैसे कि उनका इस संसार से कोई वास्ता नहीं। उस मित्र की कोठी में रहते थे, गंगा किनारे घूमते थे और शाम को बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और विष्णु का ध्यान करते थे। तो अचानक बाबा को एक दिन ऐसा विचित्र साक्षात्कार हुआ जिसमें बाबा ने विनाश का दृश्य देखा। विनाश, इतना भयंकर विनाश इस दुनिया का हो रहा है ये बाबा ने देखा, जिसमें बाबा ने देखा एक और अणु युद्ध हो रहा है। और कैसा अणु युद्ध, हवाई जहाज चारों ओर आकाश में मंडरा रहे हैं और उनमें से एक एक करके जैसे कुछ गिरा, वो गिरता है और जैसे धरती पर पहुंचता है एकदम आग ही आग फैलाता है। ये अणु बम का रूप था, उस समय तो अणु बम का तो ज्ञान भी नहीं था, ये 1936-37 की बात है, 36 में। तो चारों ओर आग ही आग लग गई वो चीज गिरने से। उनको लगा ये क्या, ये इतनी आग, देखते देखते जैसे लगा सारा शहर भस्मीभूत हो गया, एकदम राख बन गया, सब मनुष्य जलकर मर गए, मकान सब गिरकर जलकर खत्म हो गए। तो लगा कि ये भगवान, ये ऐसी दुनिया खत्म हो जाएगी। और फिर उसके थोड़े समय के बाद एक दूसरा साक्षात्कार हुआ जिसमें बाबा ने गृह युद्ध का साक्षात्कार किया। लोग एक दो को मार रहे हैं, काट रहे हैं, गला काट रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, खून देसी हो रही है, रक्त की नदियां बह रही है और लोग चिल्ला रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और देखते देखते बाबा ने देखा कि खून की चारों ओर नदियां बह रही है और लोग ऐसे मरे पड़े हैं जैसे एकदम कब्रस्तान बन गया है। तो ये गृह युद्ध का साक्षात्कार बाबा ने किया। फिर थोड़े समय के बाद बाबा ने तीसरे रूप से विनाश का साक्षात्कार किया और वो था प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा विनाश, जिसमें भूकंप, आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या बाढ़ आदि, ये पांचों ही तत्व अपना प्रकोप दिखा रहे हैं और उस प्रकोप के परिणाम स्वरूप संसार एकदम नष्ट होकर खाक हो गया। तो बाबा कहते हैं, हे भगवान, ये मुझे तुम क्या दिखा रहे? क्योंकि वो देख रहे थे जैसे वो एक कोने से ये दृश्य देख रहे हैं, उनके ऊपर नहीं असर है कोई, लेकिन एक दृश्य देख रहे हैं जैसे फिल्म में कैसे देखते हैं, इस प्रकार से उनको अनुभव हो रहा था। तो भगवान से वो कहता, हे भगवान, ऐसा मुझे क्यों दृश्य दिखा रहे हो? क्या दुनिया ऐसे खत्म हो जाने वाली है? फिर तो हे भगवान, ये दुनिया तुमने बनाई क्यों? फिर वही प्रश्न तो उनके मन में तो उठे ही थे, जिनका उनको कहीं से भी समाधान नहीं मिल रहा था। तो प्रश्न के पीछे प्रश्न और ही बढ़ते गए, जवाब तो कुछ मिला ही नहीं, शंकाएं तो बढ़ती ही गई उनकी, तो अंतर का वैराग्य भी बढ़ता ही गया। आखिर उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि पार्टनर जो उनके कलकत्ता में रहते थे, उनका बहुत बड़ा दुकान था वहां, जो इतने बड़े बड़े ग्राहक आते थे, तो पार्टनर ने उनको कहा कि आप बनारस तक आए हो, आप यहाँ आइए, मैं अकेला हूँ, इसलिए धंधे को बढ़ाना है, क्या करना है, आप तो बिल्कुल वैरागी हो गए। तो आखिर बाबा बनारस से कलकत्ता गए, कलकत्ता में अपने पार्टनर को सारा अनुभव सुनाया कि भगवान मुझसे कुछ कराना चाहते हैं, लेकिन क्या करना है ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो आखिर क्या हुआ कि प्रश्न के पीछे प्रश्न तो थे, अब इनका समाधान कौन करे? लेकिन एक वैराग्य जो मन में आ गया था, उसके परिणाम स्वरूप उसने अपने पार्टनर को कहा कि अब ये धंधा मैं नहीं कर सकता हूँ, भगवान मुझसे कुछ नया कार्य कराना चाहते हैं, इस दुनिया का एक ऐसा भयंकर विनाश होना है, इस प्रकार के मुझे साक्षात्कार हुए। तो पार्टनर ने कहा, फिर क्या करना चाहोगे? तो कहा, बस जितना भी मेरा हिस्सा है वो शेयर मैं अपना ले लूंगा और आप अपना ये धंधा संभालो। अब पार्टनर कहे, ऐसे कैसे होगा, क्योंकि बाबा बड़े हीरे पारखी थे, बहुत ही होशियार थे, और ग्राहकों से मिलना ये तो बाबा का ही काम था, वही सब तरफ जाते थे, तो वो तो केवल दुकान संभालते थे। लेकिन बाबा ने कहा कि अब मुझसे ये व्यापार नहीं होगा। तो आखिर हिसाब किताब चुकतू करके बाबा अपने हैदराबाद सिंध अपने लौकिक घर में चले गए और परिवार वालों को बता दिया कि अब ये धंधा मुझसे नहीं होगा, भगवान को मुझसे कुछ कराना है। तो घर में जब गए तो बाबा को फिर भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते ही रहे। एक दिन बाबा ने अनुभव किया कि एक बहुत सुंदर दुनिया जहां देवी देवताएं विचरण कर रहे हैं, और उस सुंदर दुनिया में जहाँ हरियाली है, पहाड़ है, नदी बह रही है, पेड़ पौधे चारों ओर इतने सुंदर, इतने बाग बगीचे, पक्षी जानवर सब, इतना सुंदर दृश्य है। और बाबा देख रहे हैं कि परमधाम भी देखा साथ साथ, परमधाम में छोटे छोटे सितारे चमक रहे हैं, आत्माएं, ये तो नहीं मालूम था ये परमधाम है और ये आत्माएं हैं, लेकिन एक सुनहरे आकाश में गोल्डन रेड कलर सुनहरा लाल रंग एक चारों ओर फैला हुआ और उसमें छोटे छोटे सफेद सितारे, वो जैसे जैसे उतर रहे हैं धीरे धीरे धरती पर उतर रहे हैं, वो एक एक देवता का रूप बनते जा रहे हैं। और वो सृष्टि देखते ही देखते इतनी सुंदर हो गई, जो पहले उन्होंने साक्षात्कार किया था कि ये दुनिया तो खत्म हुई, फिर इतनी सुंदर दुनिया बाबा ने देखी और वो एक आवाज उन्होंने सुनी। आवाज क्या थी? ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। तो बाबा को आए, ऐसी दुनिया मुझे बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास कौन सी शक्ति है ऐसी दुनिया बनाने की, तो चलो बनाना भी है, कैसे बनाऊंगा, उसके लिए मार्गदर्शन कैसे मिलेगा, करना क्या होगा उसके लिए। फिर और प्रश्न बढ़ गए, पहले से ही प्रश्न थे, अब ये दूसरे प्रकार के प्रश्न उठ गए। भगवान ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी कि एक दुनिया को ही बदल करके नया बनाना है, सतयुग लाना है सृष्टि पर। तो मन में वैराग्य तो था ही, तो और वैराग्य हो गया। परिवार वालों ने देखा कि बाबा की तो दृष्टि बदल गई, एकांत में बैठे रहते थे शांत में, जैसे किसको उनका उनको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं, धंधा तो छोड़ चुके थे। अब इनके जीवन में एक और ऐसा अद्भुत परिवर्तन आया, जिसमें जिस समय बाबा ने एक और साक्षात्कार किया, और वो साक्षात्कार था परमात्मा का, ज्योति स्वरूप का। अपने कमरे में बाबा एक दिन बैठे थे तो परिवार वालों ने सोचा अब जाके देखिए बाबा क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी से बात नहीं करना, मौन में रहना, एक वैराग्य की स्थिति, चिंतन ही चिंतन करते रहना, ध्यान मग्न रहना। तो एक दिन जब वे बाबा के कमरे में गए तो देखा लाइट ही लाइट, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, जैसे बैठे हैं बाबा एकदम, पर बिल्कुल शांत मुद्रा में, आंखें बंद है और ललाट इतना चमक रहा है और चारों ओर लाइट ही लाइट। तो जैसे ही उनके परिवार वाले उनके करीब गए तो उन्होंने कुछ आवाज सुनी जो उनके मुख से निकल रही थी। ये आवाज उनकी अपनी नहीं थी, बाबा की नहीं थी, जो कोई दूर से कोई आवाज बोल रही थी उनके मुख से, जैसे कोई आकाशवाणी होती हो। और वो शब्द क्या थे? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निजानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। बस लगातार ये शब्द निकलते गए निकलते गए। तो परिवार वालों ने सोचा ये कौन बोल रहा है, मैं शिव हूँ, ये इनकी आवाज भी नहीं है, और मुख तो इनके मुख से निकल रहा है, शब्द तो इनके मुख से निकल रहे हैं, पर आवाज इनकी नहीं है, और ये तो नहीं बोल सकेंगे ऐसे। लेकिन वे वही इंतजार करते रहे कि आंखें खुले, तब हम बाबा से पूछे कि क्या अनुभव कर रहे थे। तो जब आंखें खुली तो आंखें भी लाल लाल, इतनी लाल जैसे बल्ब चमक रहे हो, आंखों में जल रहे हो। तो बाबा से पूछा परिवार वालों ने, बाबा क्या अनुभव किया आपने, इतना चेहरा भी लाल, आंखें लाल और चारों ओर प्रकाश प्रकाश। तो बाबा के मुख से निकला, कोई प्रकाश देखा मैंने, और इतनी शक्ति थी उसमें, इतनी शक्ति, इतना प्रकाश, वो मेरे नजदीक आया, ऐसे नजदीक आया, मुझे अनुभव ऐसे हुआ जैसे वो मेरे अंदर चला गया। कि बाबा ने कहा मेरे अंदर चला गया, अब इतनी शक्ति मुझे दी है, और ये कह रहे हैं, वो शक्ति कह रही अभी मुझे कुछ करना है। क्या करना है? बस कुछ करना है। क्या करना है ये तो फिर भी समझ नहीं आई, भगवान मुझे शक्ति दे रहे हैं कुछ करने की। बस उसके बाद कैसे औरों के जीवन में परिवर्तन आ गया, उनके जीवन तो आ ही गया क्योंकि अनेक दिव्य साक्षात्कार किए, लेकिन उसके बाद उनके परिवार वालों में परिवर्तन आ गया। घर के बाद मोहल्ले वालों में, अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी, कैसे जो बाबा को देखते थे, बाबा के पास आते थे, बाबा की उन पर दृष्टि पड़ती थी, उनको बाबा से विष्णु के दर्शन होने लगे। जो बाबा को देखे वो सफेद वस्त्रधारी थे, धोती कुर्ता जैसे साधारण रूप में पहनते वही पहनते थे, सफेद पहनते थे। बिजनेस में तो बाबा बहुत हार्ड था उनका, कोट भी पहनते थे, क्योंकि अंग्रेजों के साथ वे चलते थे, राजाओं के साथ रहते थे। लेकिन फिर तो बाबा इतने सिंपल हो गए, तो जैसे ही बाबा को वो देखे या बाबा की उन पर दृष्टि पड़े तो बाबा से वो विष्णु के दर्शन करते थे। बाबा खड़े और विष्णु साक्षात जैसे उनके सामने खड़ा है, और देखते ही देखते उनको वही रूप बदल करके श्री कृष्ण का रूप बन रहा है। बाबा वो गायब हो गया और विष्णु या कृष्ण या श्री नारायण इस रूप से उनके सामने खड़े हैं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सारे रिश्ते नाते सबको आश्चर्य हुआ कि बाबा का इतना बड़ा परिवर्तन, इनसे हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि सब कृष्ण के भक्त थे, विष्णु के भक्त थे, सिंध हैदराबाद में सिंधी लोग रहते थे, सब कृष्ण के भक्त थे, बाबा स्वयं भी तो थे। तो इसीलिए जब कृष्ण के दर्शन ऐसे बाबा से हुए तो इनका मान और बढ़ गया। एक वातावरण ऐसा बन गया, एक न्यूज बन गई जो विदेशों तक न्यूज चली गई कि एक दादा लेखराज है हैदराबाद सिंध में, उनके पास कोई ऐसा जादू है। लोग तो क्या समझे क्या है, ऐसा जादू है कि जिनको भी ये देखता है, दृष्टि पड़ती है, उनको इनसे भगवान के दर्शन होते, कृष्ण के दर्शन होते, विष्णु के दर्शन होते। ये न्यूज बन गई, विश्व में चली गई। ये टाइम्स मैगजीन 1936 की, उसमें एक लेख छपा था, तो बहुत पुरानी है टाइम्स मैगजीन। फिर क्या हुआ कि आगे कैसे चमत्कार बढ़ा, लोगों को घर बैठे बाबा से साक्षात्कार हुए। घर बैठे जो बाबा को जानते भी नहीं थे उन्होंने इनके दर्शन किए, और किस प्रकार दर्शन किए, उनको श्री कृष्ण के दर्शन हुए। और श्री कृष्ण के जैसे नजदीक जा रहे हैं तो कृष्ण गायब हो गया और पिता श्री खड़े हैं वहां, दादा लेखराज वहां खड़े हैं। और वो सोचे ये कौन है, क्योंकि सब तो उनको नहीं जानते थे। लेकिन जैसे कृष्ण को ढूंढने लगे तो कृष्ण तो कहीं और खड़ा है, और वो कह रहा है कि अगर मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। तो वो भी दूर से दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण, और ये भी दिखाई दे रहे हैं कि मेरे से मिलने से पहले इनके पास जाओ, इनके पास ही मैं मिलूंगा। अब देखते देखते सारे हैदराबाद सिंध में इतनी अफवाह फैल गई, एक जैसी क्रांति हो गई। यहाँ तक अखबारों में आ गया पैसे पैसे दर्शन। ऐसे नहीं, कई बार वहां उस समय पैसे पैसे कुल्फी मिलती थी हैदराबाद सिंध में, कुल्फी एक पैसे की मिलती थी। तो पैसे पैसे कुल्फी की बजाय पैसे पैसे भगवान का दर्शन, ऐसे नाम से हेडिंग्स आ गई। और दूर दूर से लोग आते थे बाबा से मिलने के लिए, और जो उनके सत्संग में आते थे बाबा की दृष्टि पड़ती थी, उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। और बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर की शक्ति है, वो जाने वो क्यों ये करा रहा है, और उनको मुझसे क्या कराना ये भी मुझे पता नहीं। तो जितनी भी हमारी दादियां हैं इन सब ने साक्षात्कार किए हैं। शुरू में ये सब 15 साल की, 16 साल की थी, 13 14 साल की थी उस समय, 12 साल की कोई, अभी तो सब 80 से ऊपर है जितनी भी हमारी दादी, 70 साल तो हो गए, 71 साल इस विश्वविद्यालय को। तो दादी प्रकाशमणि तो 1936 में सबसे पहले वो बाबा के पास आई, और जैसे ही बाबा को देखा उनको साक्षात्कार हुआ, जबकि उसने उसके पहले कभी नहीं साक्षात्कार किया था। हाँ, बाबा से मिलने से पूर्व एक दिन घर में उसने स्वप्न देखा जरूर, सवेरे सवेरे अर्ध चेतन अवस्था में एक स्वप्न जैसा देखा, श्री कृष्ण उनके सामने आ रहे हैं और श्री कृष्ण उनको कह रहे हैं कि अगर मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। पर बाबा को तो वो जानती नहीं थी, उनके पिताजी जरूर जानते थे, वो तो 14-15 साल की थी उस समय। तो उनके पिताजी ज्योतिषी थे, वो जानते थे कि मेरी बेटी मीरा जैसी बनेगी, यानी कृष्ण को अपना जीवन देगी, ये जैसे उनकी जन्म पत्री में उन्होंने अनुभव किया, ज्योतिषी तो थे ही, सारे शहर की के वो जन्म पत्रियां देखते थे, ब्राह्मण थे। तो जब बाबा के पास दादी गई और बाबा से उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, तो बाबा को लगा कि ये जो बच्ची है ये बहुत महान कार्य कर सकेगी। और उस समय बाबा एक बोर्डिंग स्कूल खोल रहे थे, बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल, जिसमें बाबा का लक्ष्य था कि छोटे छोटे बच्चे इसमें लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी पढ़े, ये ज्ञान भी पढ़े। लेकिन ये ज्ञान पढ़ने के लिए जो शिक्षिकाएं चाहिए, टीचर चाहिए, वो बहनें चाहिए, और वो बहनें इसमें पढ़ाए जो अपना जीवन समर्पित करें। क्योंकि भगवान को, भगवान ने जैसे उनको प्रेरणा दी कि अभी माताओं बहनों को आगे करो, नारी शक्ति का जब उद्धार होगा, वो जब आगे आएगी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, तब इस संसार का भी उद्धार होगा। इसीलिए आप कई हमसे पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों, या तो भाई भी आते हैं, केवल बहनें थोड़ी आती है, परंतु बहनों के द्वारा संचालित है, बाकी भाई क्यों नहीं आते हैं, पर संचालन बहनों द्वारा है। क्योंकि ये शिव परमात्मा का आदेश था कि बहनों को आगे करना है। मम्मा जगदम्बा सरस्वती, आपने अपना देह 1965 में छोड़ा, 48 साल की उम्र में, वो भी 15-16 साल की थी जब 1936 में आई, और बाबा को देखते ही उनको लगा यही मेरे सच्चे पिता हैं। तो शिव परमात्मा इनके मुख से ज्ञान देने लगे। बाबा को कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, बाबा तो गीता पढ़ते थे और गीता का पुस्तक हाथ में उठाते थे, लेकिन खोलने से पहले ही शिव परमात्मा उनके तन में प्रवेश होकर के ज्ञान देना शुरू कर देते थे। तो बाबा को लगता था ये कौन बोल के गया, ये मैंने तो बोला ही नहीं, अब मैं जो बोल रही हूँ मैं तो सुन रही हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि मैं बोल रही हूँ, अब कोई और मेरे तन में आके बोल के जाए, मैं कहूंगी ये कौन बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रही हूँ, कोई और आवाज हो जाए तो वो तो कोई और की आवाज है। तो शिव परमात्मा उनके तन में प्रवेश होकर के ज्ञान देने लगते थे। तो बाबा को लगता था ये कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, और जो बाबा के सामने आए उनको साक्षात्कार होते थे, वही साक्षात्कार जो बाबा ने खुद अपने जीवन में किए, श्री कृष्ण के साक्षात्कार, विष्णु के साक्षात्कार, विनाश के साक्षात्कार, सतयुग के साक्षात्कार, ज्योति स्वरूप के साक्षात्कार, और बस इतने मग्न हो जाते थे। तो लोगों को लगा कि ये क्या जादू है, और शिव परमात्मा का संदेश मिला, संकेत मिला कि अब अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ, और शिव परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ो, वही आपके सर्वस्व हैं। जब उनको याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे और आप आत्माएं पावन बन करके मुक्ति धाम जाएंगी, और उस सत्य की दुनिया में देवता के रूप में पैदा होंगे या जन्म लेंगे। तो ये ज्ञान शिव परमात्मा देने लगे उनके मुख से। तो सब ने एक संकल्प किया कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। लेकिन ये बाबा नहीं कह रहे थे, ब्रह्मा बाबा नहीं कह रहे थे, ये शिव परमात्मा उनके मुख से कह रहे थे। तो जब लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ लोगों ने जिन्होंने समझा उन्होंने तो संकल्प कर लिया समय की पुकार के आधार पर, लेकिन जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने विरोध किया कि ये कौन सा दादा लेखराज है और ये क्या बातें कर रहा है, हमारे परिवार में हस्तक्षेप कर रहा है, हमारे अधिकार को छीन रहा है, न जाने क्या क्या कहने लगे। पर बाबा कहते थे बच्चे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी शक्ति है ही नहीं, मैं भी तो आपकी तरह ही था, एक गृहस्थी ही तो था, मेरे भी तो बाल बच्चे मेरे साथ ही है, मैंने कुछ छोड़ा थोड़ी है, और आपको भी नहीं छोड़ना है, किसी को भी कुछ नहीं छोड़ना है, लेकिन ये भगवान का आदेश है पवित्र बनो योगी बनो, कैसे बनना है वो मुझे भी नहीं मालूम है, मुझे जैसे परमात्मा ने संकेत दिया तो मैं भी अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना रहा हूँ, अब ये भगवान को कुछ कराना है। तो उसके बाद मानो 14 साल एक ऐसी भट्टी तैयार हुई, मानो करीब 385 भाई बहने पूर्ण रूपेण समर्पित हो गए, परिवार के परिवार समर्पित हो गए और हैदराबाद सिंध से कराची चले गए 1937 के अंत में। और 37 के अंत मानो 38 से लेकर के 1950 तक करीब 13-14 साल कराची में रहे। जिन 13-14 सालों में संसार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, एक और दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा 1939 से 1945 तक, 6 साल तक विश्व युद्ध चला चारों ओर दुनिया में, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे उस समय। यूरोप का तो नक्शा ही बदल गया, कम्युनिज्म आ गया, साम्यवाद आ गया, हिटलर ने क्या नहीं किया उस समय। और ये कब युद्ध समाप्त हुआ, जब अमेरिका ने जापान पर एक बम गिराया, हिरोशिमा नागासाकी पर, और जर्मनी जापान जो दूसरे पक्ष के थे उन्होंने सरेंडर किया अमेरिका के आगे, और ये युद्ध समाप्त। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना, जिसमें अनेक देशों ने मिलकर ये प्रण लिया कि आगे कोई युद्ध नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर आगे कोई युद्ध हुआ तो दुनिया बचेगी नहीं, जो आपने सुना इसके पहले। लेकिन ये विश्व युद्ध हुआ जरूर, और हिरोशिमा नागासाकी ऊपर जो बम गिराए गए वो तो बहुत छोटे बम थे, बेबी बम कहते, और उसके भेंट में तो आज ऐसे बम बने हैं जो क्या वर्णन करें आपको। तो ये छोटी सी रिहर्सल थी, शिव परमात्मा ने कहा ये तो रिहर्सल है, जैसे फाइनल के लिए रिहर्सल होती है ना। फिर उसी समय 45 में ही बहुत जबरदस्त भूकंप आए चारों तरफ, लेकिन शिव परमात्मा ने जो 14 साल उन बहनों को ऐसा सुरक्षित, वे समर हॉलीडेज मनाने गर्मियों के दिनों में माउंट आबू आते थे, 3-3 महीना माउंट आबू में रहते थे, एक एक का महल है। तो जब अंग्रेज चले गए और भारत स्वतंत्र होने के बाद गणतंत्र भी हो गया, सब राजाइयां खत्म हो गई, सब एक प्रजातंत्र में आ गए, उसके बाद इन राजाओं ने ये सब या तो बेच दिया, या तो होटल बना दिया, या तो स्कूल है चारों तरफ माउंट आबू में। तो शिव परमात्मा ने संकेत दिया कि आपको पहाड़ पर जाना है, तो माउंट आबू कराची से बहुत नजदीक है, पश्चिम तरफ है ये। लेकिन इस संस्था के इतने सारे मेंबर्स थे भाई बहने, पाकिस्तान सरकार का बड़ा सहयोग था, उन्होंने पूरा स्टीमर दिया, इतना बड़ा जहाज, और सब कुछ वहां से ले आए, जो भी इनका सामान था, एक चीज भी नहीं, सुई भी नहीं छोड़ी, सुई भी कोई छोड़ी हो वो भी नहीं, सब छुट्टी दी। और वहां पर कैसे मिलने के लिए भी आए कि आप भारत में जा रहे हैं, क्योंकि सब शांति हो गई थी उसके बाद। और माउंट आबू में यहाँ एक ब्रिज कोठी है, भरतपुर राजा का महल है, वो किराए पर लिया। फिर जब जो भाई बहने समर्पित हो गए, अपना जीवन ऐसा उन्होंने योगी बना लिया, 14 साल की भट्टी तपस्या की, जब माउंट आबू आए तो उनके परिवार वालों को पता चला कि ये सब माउंट आबू में आए हैं, तो उन्होंने पत्र लिखे जो भारत में पहले से आ गए थे कि आप हमारे पास आइए, जो आपने तपस्या की है उसका हमें अनुभव कराइए। तो बाबा ने कहा अभी जाओ सेवा करने के लिए। तो 1952 में सबसे पहले हमारी बहने भारत में आबू से बाहर निकली और सीधा दिल्ली गई। दिल्ली में सबसे पहले केंद्र खोला, फिर बम्बई गई, लखनऊ गई, बैंगलोर गई, हैदराबाद गई, आंध्रा, मानो जहां जहां उनके रिश्तेदारों ने उनको निमंत्रण दिया बाबा ने उनको भेजा, और उनको ये ज्ञान देने लगी जो उन्होंने प्राप्त किया था। तो जब रिश्तेदारों ने ये ज्ञान सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि बिल्कुल उनको शांति मिली, परमात्मा का सत्य परिचय उनको मिला। तो 15 दिन एक मास के बाद वो कहे कि वह हम तो वापस जाएंगे, हम तो वहीं रहेंगे। तो परिवार वाले कहे कि अभी तो इतना अच्छा आपने ज्ञान दिया, आप चले जाएंगे तो आपकी बात फिर कौन हमें सुनाएगा। तो बाबा को वो लिखते थे कि बाबा हम क्या करें, हमें छोड़ते नहीं है। तो बाबा उनको कहते थे कि आप भले रहो वहां, लेकिन अपने परिवार वालों को कहो कि हम ये ज्ञान सबको देना चाहते हैं, समाज को अधिकार है ये, इसीलिए हमें कोई ऐसा मकान लेकर दो जहां हम सेवा केंद्र खोलें और हम उसमें ये सेवा करेंगे ताकि कोई भी उसमें आ सके और ये ज्ञान प्राप्त कर सके। तो परिवार वालों ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हम मदद करेंगे। कई हमसे पूछते हैं कि आपके सेवा केंद्र कैसे खुलते हैं, हम कहते हैं कोई मुश्किल बात नहीं है, निमंत्रण मिलते हैं, भाई बहने निमंत्रण देते हैं कि हम तन से मन से धन से सेवा करेंगे, जमीन देंगे मकान देंगे, बस आप आकर के वह सेवा करो। तो शुरू से ही इस प्रकार की प्रणाली चलती आ रही है और इसी प्रकार से चारों ओर सेवा केंद्र खुलते गए और खुलते खुलते कितने सेवा केंद्र जो आज तक हैं, 130 देशों में 8,000 से भी अधिक सेवा केंद्र, और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित। हमारी दादियां तो थोड़ी सी थी, तो मानो एक बीज पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने रोपा और आज इतना बड़ा वट वृक्ष के रूप में ये तैयार हो चुका है। और क्या लक्ष्य है इस विश्वविद्यालय का कि मानव इतना ऊंच बने जो नर नारायण बने, नारी लक्ष्मी बने। आज ये दादियां हमारे आगे प्रेरणा की स्रोत है, लेकिन इनके आगे प्रेरणा के स्रोत पिता श्री ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती थी। तो आपका नाम राधा राधिका था, आप भी जब इस संस्था में आई तो 15-16 साल की थी, बहुत छोटी आयु में ही आई, पढ़ाई करती थी, मैट्रिक पढ़ती थी, लेकिन बाबा ने इनको जैसे देखा बाबा को लगा कि ये बहुत महान आत्मा बन सकती है। तो जैसे बाबा से लोगों को कृष्ण के दर्शन होते थे, नारायण के दर्शन होते थे, इनको देख करके इनकी आंखें इतनी प्यारी थी, इनका मानो मम्मा के अंदर बहुत गुण थे, बहुत कलाएं थी, इनकी आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा गीत गाती थी और सितार बजाती थी, बहुत कलाएं थी और गीत लिखती भी थी, सुर भी बनाती थी और गाती थी। तो बाबा अक्सर करके उनको गीत लिख कर देते थे और वो गाती थी, खुद भी लिखती थी। तो जैसे इनको देखते थे तो सबको इनसे राधे के दर्शन होते थे, लक्ष्मी के दर्शन होते थे। थी तो कुमारी, लौकिक में इनका कोई संबंध नहीं है। पिताश्री की थी आयु तो 60 वर्ष की थी, इनकी तो 16 साल की थी, ये तो बहुत छोटी आयु की थी उसकी भेंट में। तो शिव परमात्मा ने इनको आध्यात्मिक नाम दिया पिताश्री ब्रह्मा। कई समझते ब्रह्मा माना भगवान, ब्रह्मा माना रचयिता, ब्रह्मा को देवता मानते हैं, ब्रह्मा को मनुष्य भी मानते हैं। आप पुष्कर जाइए, दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा मिलेगा, तो दाढ़ी मूछ वाले देवताएं थोड़ी होते। ब्रह्मा मानो पिताश्री ब्रह्मा ये नाम क्यों दिया, क्योंकि परमात्मा शिव ने इनके माध्यम से नई दुनिया की स्थापना करने के लिए निमित्त बनाया, इसीलिए ब्रह्मा को रचयिता माना गया है। और विष्णु का साक्षात्कार उनको सबसे पहले कराया कि तुम ही ऐसे बनेंगे। वही श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेकर के अंत में साधारण रूप में आती है, फिर पुरुषार्थ करके फिर देवात्मा बनते हैं। ये साक्षात्कार शिव परमात्मा ने उनको कराया और वही पूज्य आत्मा फिर वही पुजारी बनती है। और इनसे जो राधे के साक्षात्कार होते थे तो बहुत लोग ध्यान में जाते थे, मम्मा की आवाज भी इतनी मीठी थी, तो जैसे ही वो ओम की ध्वनि करती थी सारी सभा साक्षात्कार करने लगती थी और उनको लक्ष्मी के रूप में देखते थे। तो बस दीवाने हो गए सब, जैसे क्रांति फैल गई कि जो भी वहां जाता है उनको दर्शन होते। तो अब बाबा के प्रति उस समय हैदराबाद सिंध में जब ये आरोप लगे और बाबा का ये मेरी शक्ति तो है नहीं, तो बाबा कुछ समय के लिए कश्मीर चले गए थे और मम्मा को सारा सौंप दिया, क्योंकि शिव परमात्मा का आदेश था कि बहनों को आगे रखो, तो आप हमारी सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, मानो प्रशासिका के रूप में रही और सबका प्रशासन करती रही। तो मम्मा ने शरीर छोड़ा 65 में, माउंट आबू में शरीर छोड़ा, और पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 69 में, और उन्होंने 93 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा। बहुत दीर्घायु थी उनकी, लेकिन अंतिम घड़ी तक बाबा इतने स्ट्रांग थे, कभी हाथ में लकड़ी नहीं उठाई 93 साल की उम्र में भी, कभी आंखों पर चश्मा नहीं पहना, कभी कमर नहीं झुकी उनकी, सीधा ही बैठते थे। आजकल तो वही पांव दर्द कर रहा, ये दर्द कर रहा, वो दर्द बचपन में जवानी में ही हो जाता है, उनका तो उस उम्र में भी नहीं था, उस समय की बात थी। तो ये शिव परमात्मा की उनमें शक्ति थी, और अंतिम दिन भी बाबा ने सारी सेवाएं की। दादी प्रकाशमणि जी तो बॉम्बे में रहती थी उस समय, और बाबा बॉम्बे में जाते रहते थे, लेकिन माउंट आबू में थे 18 जनवरी 1969 को, और दादी प्रकाशमणि जी 13 जनवरी को माउंट आबू आई थी एक ग्रुप को लेकर के। तो 17 तारीख को उस ग्रुप ने विदाई ली, पर बाबा ने दादी प्रकाशमणि जी को रोक दिया और कहा कि तुम थोड़े दिन और रुक जाओ, क्योंकि मम्मा के देह त्याग के बाद दूसरी एक बड़ी बहन थी जिनको हम दीदी कहते थे, दीदी मनमोहिनी। तो दीदी मनमोहिनी रहते थे, पर दीदी मनमोहिनी वो पहले दिल्ली में रहती थी और दिल्ली के सारे सेंटर्स का संचालन करती थी, लेकिन जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने दीदी को बुला लिया माउंट आबू में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में रही। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी प्रशासन हाथ में नहीं लिया, बहनों को ही दिया। ये भी एक आध्यात्मिक क्रांति थी इस संस्था के द्वारा। तो फिर उसके बाद जब बाबा दादी को बाबा ने रोक दिया, क्योंकि बड़ी दीदी जी इलाहाबाद गए हुए थे कुंभ मेले में, जनवरी का महीना था और बहुत ठंडी थी, इतनी ठंडी माउंट आबू में होती थी जो बात मत पूछो। आजकल तो कुछ भी नहीं है उसकी वेट में, क्योंकि वैसे ही गर्मी दिनों दिन बहुत बढ़ती जा रही है। तो अब माउंट आबू जाएंगे आपको भी दिन में गर्मी लगेगी, जो पहले कभी पंखे नहीं होते थे, कोई जरूरत ही नहीं होती थी, और ठंडी के दिनों में तो इतनी सर्दी होती थी कि हीटर वीटर तो उस समय होते नहीं थे, जो जैसे कश्मीर में वो कांगड़ी जलाते ना, उस प्रकार से वहां जलाते थे माउंट आबू में, इतनी ठंडी होती थी। तो बहुत ठंडी का दिन था, 18 जनवरी का दिन। बाबा को थोड़ा छाती में दर्द हुआ जरूर, सर्दी तो थी, तो दादी उनके पास गई और कहा कि बाबा वो ठंडी है बाहर, आप कमरे में रहें, आप ना निकले, क्योंकि बाबा रोज 4 बजे मेडिटेशन कराते थे, 4 बजे ये नियम था, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। फिर 6:30 बजे आकर के ईश्वरीय महावाक्य, जिसको हम मुरली कहते हैं, वो चलाते थे। माउंट आबू में जाएंगे, वहां उनका कमरा है, वहां क्लासरूम है जिसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं, वहाँ बाबा की झोपड़ी है जहाँ बाबा 11 बजे आकर के बैठते थे, और एक शांति स्तंभ बनाया गया जो ब्रह्मा बाबा की याद में है, वहाँ उनकी समाधि है। तो सवेरे दादी जी उनके कमरे में गए 18 जनवरी के दिन कि बाबा बहुत ठंडी है, आप ना निकले। तो बाबा ने कहा ठीक है। तो दादी जी खुद जाकर के योग भी कराया, क्लास भी कराया, और फिर जब 9 बजे धूप निकल आई तो बाबा ऑफिस में आए और जितने भी पत्र थे सारे बच्चों के, सबके जवाब दिए, एक पत्र भी नहीं छोड़ा। हल्की को बुला करके जैसे सारा आश्रम घुमाया, दादी जी तो रहते नहीं थे माउंट में, तो जैसे दादी जी को आज सब सौंप रहे हैं, एक एक स्टोर रूम, कपड़े कहाँ रहते, अनाज कहाँ रहता, बर्तन कहाँ रहते, क्योंकि इतना बड़ा आश्रम, इतने भाई बहने आते हैं तो सामान तो होगा ही। पर दादी जी को तो पहले कुछ पता नहीं था, और सब बताते गए जैसे आज ही बस सौंप रहे हैं सब बिना कुछ कहे। फिर शाम हुई 3-4 बजे दिन के, जब पोस्ट फिर से आई, लेटर्स बहुत आते थे सेवा केंद्र, तो बाबा ने उनका भी जवाब दे दिया 5 बजे तक, ताकि कल तक कोई पत्र न रखे जाए। जो बाबा की सेक्रेटरी लिखती थी, बाबा को कहे बाबा ये कल लिखेंगे, कल संडे है, तो बाबा कहे नहीं सब आज ही पूरा करना है। क्यों वो नहीं बताया, बाबा को तो जैसे संकेत मिल ही गया होगा। फिर उसके बाद शाम को दादी जी को बुलाया और बाबा ने कहा कि बच्ची बाबा की तबीयत ठीक है, लेकिन सवेरे कोई क्लास नहीं कराया, मुरली नहीं सुनाई, तो शाम को बाबा आएंगे। लेकिन रात को फिर ठंडी हो जाती थी, सर्दी होती थी, तो शाम की क्लास 8:30 से 9:30 बजे तक होती थी, लेकिन बाबा ने कहा कि थोड़ी जल्दी कर लेंगे। 7:30 बजे भोजन होता था, तो बाबा ने कहा 6:30 बजे भोजन कर देंगे और बाबा 7:30 बजे आएंगे और 1 घंटा मुरली चलाएंगे 8:30 बजे तक। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ, दादी जी को बुला करके इंस्ट्रक्शंस दे दिए और वैसे ही भोजन का इंतजाम हुआ, क्लास हुआ। 8:30 बजे जैसे मुरली पूरी की, महावाक्य उच्चारण करना पूरे किए, तो वैसे जब भी रोज मुरली सुनाते थे तो लास्ट में कहते अच्छा बच्चों को गुड नाइट नमस्ते, गुड नाइट ऐसे कहते थे। तो बाबा ने गुड नाइट नमस्ते किया और अपने गद्दी से उठे और उठ करके दरवाजे तक गए। हिस्ट्री हॉल है पांडव भवन में, जो सबसे पुराना हमारा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ बाबा रहते थे, उनका कमरा वगैरह सब वही है। तो बाबा उठे और दरवाजे तक गए, दहलीज तक पहुंचे, और दहलीज तक पहुंचते ही फिर से अंदर मुड़े, अंदर मुड़कर बच्चों के आगे झुके और झुक करके जैसे हाथ जोड़कर 3 शब्द उच्चारण किए। वो बाबा के अंतिम शब्द थे। वो 3 शब्द क्या उच्चारण किए, बच्चे सदा निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी रहना। अच्छा, बच्चों से छुट्टी, छुट्टी, छुट्टी तो तब कहा जाता है जब वापस नहीं मिलना हो, छुट्टी दे दो, गुड बाय, बाय बाय। तो बाबा से छुट्टी ली, नहीं तो छुट्टी है कभी नहीं कहते थे, या विदाई कभी नहीं, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग या नमस्ते, ओम शांति, पर छुट्टी माना वापस नहीं मिलेंगे। बस फिर तो छुट्टी कह करके बाबा अपने कमरे में चले गए। करीब 9:15 बजे थे, अपने पलंग पर बाबा बैठे, तो दादी जी को संकल्प आया कि मैं बाबा से मिलने जाऊं कमरे में, आज तो जल्दी है, नहीं तो रात के 9:30 बज जाते, आज तो 8:30-9:30 ही हुए हैं, 1 घंटा पहले हो गया सब। तो जैसे दादी बाबा के कमरे में गई, दादी प्रकाशमणि उनके कमरे में गई, तो देखा बाबा अपने पलंग पर बैठे हुए हैं और उनकी आंखें बंद है, बिल्कुल अशरीरी हो रही है, जैसे देह से न्यारे हो रहे। हो सकता है बाबा को चेस्ट में दर्द हुआ होगा, बताया तो कुछ नहीं, पर बिल्कुल शांत, बिल्कुल उसी स्थिति में थे। तो दादी जाकर के उनके आगे खड़ी हो गई। अब खड़ी तो हो गई, आंखें तो बंद थी बाबा की, तो दादी ने सोचा बाबा की तबीयत कैसे है मैं पूछूं। तो दादी ने क्या किया, बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा के हाथ ऐसे ही थे, तो जैसे बाबा का हाथ पकड़ा, दोनों हाथों से बाबा के दोनों हाथ पकड़े, तो बाबा ने आंखें खोली, और जैसे ही खोली तो दृष्टि दादी जी को दी, और हाथ में हाथ दृष्टि दादी जी के प्रति, और उसी वक्त आत्मा उड़ गई। मानो जैसे कि बाबा अंदर ही अंदर शिव परमात्मा को भी याद कर रहे थे, उस आत्मा को भी याद कर रहे थे, क्योंकि बोला तो कुछ नहीं था, पर दृष्टि और हाथ की शक्ति से सारे वाइब्रेशन, सारी शक्ति दादी जी को दे दी, जिसको कहते हो अपनी सारी विल पावर्स विल कर दी, बस दृष्टि और हाथ के द्वारा बिना कुछ कहे। तो उस समय दादी जी को इतनी शक्ति महसूस हुई, ये तो जरूर लगा कि हाथ ढीले हो गए, लेकिन क्या हुआ ये समझ में नहीं आया उस समय कि बाबा चले गए, कि पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी शरीर तो ढीला हो गया, बस फिर तो लिटा दिया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की परंतु आत्मा तोड़ गई थी। बस फिर दादी जी को जो बाबा की शक्ति मिली शिव परमात्मा की, किसी को रोने नहीं दिया, किसी को भी रोने नहीं दिया, एक आंसू नहीं बहाने दिया, क्योंकि इतनी हिम्मत दादी के अंदर आ गई, क्योंकि ये निश्चय था कि बाबा जा नहीं सकते। क्योंकि आप जानते इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारी कई ऐसी बहनें हैं जो ट्रांस मैसेंजर्स हैं, ध्यान में जाती है, साक्षात्कार करती है, बहुत करते हैं, और कई जैसे जो शरीर छोड़ते हैं उनका भी साक्षात्कार वो करते हैं कि वो आत्मा बाबा के पास गई और कैसे बाबा से वो मिलती है, ये बहुत कुछ अलग कई बातें हैं। जब आप सेवा केंद्रों पर जाएंगे तब वहां जाकर सुन सकेंगे ये बात। तो एक अन्य दादी है जो जिनका नाम है हृदय मोहिनी दादी, वो दिल्ली में रहती है और दिल्ली और उसके आसपास सेवा केंद्रों का संचालन करते हैं, देखा होगा कईयों ने, फोटो तो देखे होंगे मैगजीन्स में। तो वो अक्सर करके पिताश्री ब्रह्मा बाबा को ध्यान में देखती थी और वो देखती थी सूक्ष्म वतन में सफेद सफेद दुनिया, उसमें ब्रह्मा बाबा लाइट के आकार में, और वो स्वरूप उनको कह रहा है कि मैं पिताश्री जी का संपूर्ण स्वरूप हूं और पिताश्री ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन करके ये बनेंगे, ऐसे उनको दिखाई देता था, साक्षात्कार होता था। तो अक्सर वो देखती थी कि कैसे पिताश्री ब्रह्मा बाबा उस संपूर्ण रूप के बहुत निकट आ रहे हैं, नजदीक पहुंच रहे, इतने निकट आ रहे हैं जैसे लगा कि बस अब उसमें समा जाएंगे, पर वो किसको बताती नहीं थी इसका मतलब क्या है, वो खुद भी नहीं समझती थी, समा तो जाएंगे निकट भी आ रहे थे। लेकिन जब वो आई बाबा के अव्यक्त होने के बाद, तो दादी जी ने उनको कहा कि जाओ आप जाओ वतन में, तुम तो बाबा को देखती हो सूक्ष्म वतन में, और बाबा से पूछ के आओ कि बाबा चले कैसे गए। तो जब वो वतन में गई तो उसने क्या अंतर देखा कि वो जो साकारी रूप था वो अव्यक्त रूप में समा गया, मर्ज हो गया और एक ही रूप दिखाई दिया। तो जब उनसे पूछा कि आप चले कैसे गए, तो कहा कौन कहता है बाबा चले गए, बाबा गए नहीं है, केवल कमरा और कपड़ा बदली किया है। अब कमरा और कपड़ा का मतलब क्या है, ये शरीर रूपी कपड़ा साकारी चोला वो छोड़ा वो उतारा और सूक्ष्म आकारी लाइट का आकार का चोला ये धारण किया, और कमरा बदली किया माना साकारी दुनिया का कमरा छोड़कर अव्यक्त वतन सूक्ष्म वतन में पहुंच गए हैं और ब्रह्मा बाबा गए नहीं है, आपके साथ है, आपके साथ ही रहेंगे। ये किसने कहा, शिव परमात्मा ने उस अव्यक्त रूप के द्वारा कहा, जिसको हम कहते हैं अव्यक्त बाप दादा, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कोडवर्ड है, अव्यक्त बाप दादा। बाप दादा क्यों कहते हैं, बाप माना पिता और वैसे हिंदी भाषा में दादा माना पिता का पिता, ग्रैंडफादर, लेकिन सिंधी भाषा में दादा माना बड़ा भाई, बड़े भाई को दादा कहते हैं और बड़ी बहन को दादी कहते हैं, जैसे हिंदी में बड़ी बहन को दीदी कहते हैं ना, हरियाणी भाषा में जीजी, हाँ ऐसे कहते हैं ना, तो हिंदी में दीदी, तो दादी माना सिंधी भाषा में बड़ी बहन को कहते हैं, तो दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, माना ये बड़ी बहने हैं हमारी, वरिष्ठ बहने। तो बाबा को कहते थे दादा माना बड़ा भाई, आत्मा है ना, परमात्मा नहीं है ब्रह्मा बाबा, शिव परमात्मा वो एक है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, वो जन्म मरण से न्यारा है, ये आत्मा तो जन्म और मरण के चक्र में आने वाली है। तो इसीलिए बाप दादा माना शिव पिता और ब्रह्मा दादा माना बड़ा भाई, आत्मा है ना ये, या ब्रह्मा बाबा हमारा अलौकिक पिता है, इनको परमात्मा भी नहीं कहते, गुरु भी नहीं कहते, लेकिन अलौकिक पिता के रूप में है, जिस अलौकिक पिता के द्वारा वो पारलौकिक पिता हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने उनका नाम रखा ब्रह्मा, प्रजा पिता ब्रह्मा। तो बाप दादा दोनों मिल करके गुलजार दादी के तन में प्रविष्ट हुए। जब संस्कार हो गया 21 जनवरी को, उसके बाद गुलजार दादी फिर ध्यान में गई और अव्यक्त बाप दादा की उनमें पद्रावणी हुई। और अभी तक अव्यक्त बाप दादा का पाठ चल रहा है। शिव पिता और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा सूक्ष्म रूप में गुलजार दादी के तन में प्रवेश होकर के वाणी चलाते हैं। अभी भी हर 6 महीने में ये कार्यक्रम होता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। और उसमें हजारों भाई बहने आते हैं। ये जो सामने आप हॉल देख रहे हैं जिसमें 20,000 भाई बहने बैठ सकते हैं, उस समय वो प्रोग्राम चलता है। तो इसीलिए गुलजार दादी उस समय यहाँ होते हैं और बाप दादा का कार्यक्रम चलता है और हजारों भाई बहने आते हैं। अब आप सोच सकते हैं, बहन जी हम भी आ सकते हैं? हम कहते क्यों नहीं आ सकते हो, आपका हक है। लेकिन कौन उसमें आ सकते हैं? जो हमारे यहाँ के नियमों का पालन करेंगे, शुद्ध शाकाहारी भोजन हो, हाँ, पवित्रता की धारणा हो, नियमित कम से कम 1 साल विद्यार्थी के रूप में हो, कम से कम 1 साल के तो हो, रोज क्लास में जाने वाले हो, तब तो जीवन में धारणाएं आ सकती है, शक्ति मिलेगी। और फिर 1 साल के बाद फिर क्यों नहीं आ सकते? आपका घर है तो आप आना चाहेंगे? आना चाहेंगे? हाँ, जो आना चाहेंगे वो हाथ ऊपर करो। अच्छा, तो फिर नियमों का पालन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सहज है, बड़ा सहज, मुश्किल कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, शक्ति तो मिलेगी। या हमसे कई पूछते हैं, बहन जी यहाँ की फीस क्या है? हम कहते हैं वैसे फ्री है, बाकी हाँ बाबा की भंडारी में कोई देता है, ये उनकी अपनी इच्छा अनुसार है। क्योंकि कोई होटल तो नहीं है ना जो बिल निकाल कर आपको देंगे कि 4 दिन आप यहाँ रहे इतना आपका बिल है, खाने पीने का, रहने का, बिजली का, पानी का, ये बिल तो नहीं देंगे। ये तो पिता का घर है, शिव पिता है हमारा, इसलिए वो बिल तो नहीं देंगे, भगवान के तो हम सब बच्चे हैं। लेकिन जरूर जो भी आते हैं वो समझते हैं कि हमारा घर है, हमने हमारे ऊपर खर्चा हुआ है तो हम जरूर डालें। तो बाबा की भंडारी है उसमें डालते हैं या देते हैं, भंडारी में डालते हैं। लेकिन इसमें ये है कि जो जितनी श्रद्धा भावना से करते हैं उस अनुसार, ये नहीं है कि 1,000 रुपया किसने किया तो उसका ज्यादा बनेगा, 1 रुपया किया तो कम बनेगा, वो बात नहीं है। अब किसकी कमाई 100 रुपया हो और 1 रुपया दिया, और किसकी कमाई 1,000 हो और 10 दिया, किसकी 10,000 हो और 100 दिया, तो रेशियो तो वही बनेगा ना, 1/100। तो इसीलिए हर एक अपना भाग्य बनाता है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। उस रूप में कोई फीस नहीं है, जैसे अन्य स्कूलों में कॉलेजेस में फी होती है, वो फी देनी होती है। लेकिन हम कहते हैं यहाँ की फीस बहुत भारी है, आप देने को तैयार हो? फीस कौन सी है पता है? हम कहते हैं यहाँ की फीस है 5 खोटे पैसे। हाँ, 5 खोटे पैसे कौन देने को तैयार है? अब ये भी सोच करके हाथ उठाना। हाँ, कल पूछेंगे, आज नहीं, फिर पूछेंगे आपसे। तो यहाँ की फीस है 5 खोटे पैसे। ये खोटे पैसे सबके पास है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। ये नहीं है कि गरीब के पास नहीं है, अमीर के पास है, या अमीर के पास नहीं है, गरीब के पास है। कौन से 5 खोटे पैसे? ये 5 विकार, ये यहाँ की फीस है। हम कहते हैं ये फीस, ये देके जाओ, और अगर सब नहीं तो एक कोई न कोई व्यसन, विकार, अशुद्धि, कोई कमी, कोई कमजोरी। आप तीर्थ स्थान पर आए हो ना, तो तीर्थ स्थान पर कुछ तो दान करके जाएंगे या नहीं? वैसे भी दान किया जाता है तीर्थ स्थान पर, तो कल तक का आपको टाइम देते हैं, सोचना क्या हम भगवान के घर में दान करके जाते हैं। तो ये दान करके जाओ और 1 आना लेकर जाओ। 1 आना लेकर जाओ माना एक बार रोज सेवा केंद्र पर आना ये संकल्प करके जाओ। करने को तैयार हो? अब जो तैयार है वो हाथ उठाए। अच्छा, अब भले ताली बजाओ, जितनी भी बजाएंगे अपने लिए, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि ये जितना दे दान करेंगे तो जो आत्मा पर ग्रहण है वो छूट जाएगा। वो तो गाते ना, दे दान छूटे ग्रहण, तो दान क्या देते उससे कौन सा ग्रहण छूटेगा, वो तो अपने आप ग्रहण छूटता है। लेकिन ये विकारों का दान देने से आत्मा का ग्रहण छूटता है और आत्मा शुद्ध और पावन बनती है। तो इसलिए आप सब यहाँ आए हो और ये जीवन कहानी सुनकर जरूर कुछ प्रेरणा आपने पाई और हमें विश्वास है कि इससे आपका जीवन में परिवर्तन आएगा। अब हम यही समाप्त करते हैं। ओम शांति।